नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, 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 यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मेरा नमस्कार मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि मूसा की पत्नी सिपोरा ने मूसा के बेटे को जन्म दिया और उसका नाम गेरशोम रखा। और हमने देखा कि परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिए थे। तब हमने देखा कि परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देते हैं और उससे बातें करते हैं। तो आज हम अपने अध्ययन को उससे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सके। इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रेमी प्रभु, हमारे उन तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रभु आप प्रत्येक के दिल, दिमाग और आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदयों को, विचारों को आप खोल दें, ताकि जब वो आपके वचन को सुनते हैं निश्चित रूप से प्रभु आपका वचन उनके हृदयों में कार्य करने पाए और इनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चिंता है, तकलीफ है, कष्ट है, प्रभु आप उसका समाधान अपने वचन के द्वारा से करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जो बीमार हैं, दुखी में हैं, चिंतित में हैं, प्रभु आप उनकी भी सुधि लीजिए, उन्हें भी चंगाई दीजिए, उन्हें भी शांति दीजिए, ताकि वे भी आपके नाम को महिमा देने पाएं। इस वक्त फिर से एक बार हम इसे प्रत्येक के जीवन को, इस समय को, इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए आज हम अपने इस अध्ययन को निर्गमन की पुस्तक उसके 3:9 से आरंभ करें। हम निर्गमन की पुस्तक 3:9-11 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, सो अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। मित्रों क्या आपने ध्यान दिया कि मूसा को क्या हुआ? इस समय के 40 वर्ष पहले वह इसराइलियों को छुड़ाने के लिए तैयार था, परंतु मूसा बहुत अहंकारी और हठी था। उसने एक मिस्री का घात कर अपने इसराइली भाई को छुड़ाया था और उसने सोचा कि वह इसराइलियों को छुड़ाने में अकेला ही सामर्थ है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को निर्जन स्थल में ले जाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया और मूसा को यह एहसास हुआ कि परमेश्वर की सामर्थ के बिना वह कितना दुर्बल है। मित्रों मूसा परमेश्वर से कह रहा है, मैं कौन हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता जो तूने मुझे करने को कहा है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर अब मूसा का इस्तेमाल कर सकता है। यह परमेश्वर का अपने लोगों को तैयार करने का तरीका है। पहले राजाओं की पुस्तक उसके 17:1 में इलिया नबी के बारे में हमें व्याख्या मिलता है, जहाँ पर लिखा है, और 30वें इलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। मित्रों एलिय्याह ने इतना साहस दिखाया कि वह अहाब और इजेबेल के राजभवन में सीधा अंदर घुसा और उन्हें बताया कि परमेश्वर ने उसे निर्जन स्थान में ले जाकर तैयार किया। एलिय्याह जितना वो यहाँ साहसी दिखता है उतना पहले नहीं था। एलिय्याह ने नाले का पानी पिया और कौओं द्वारा भोजन प्राप्त किया और अकाल पड़ा और नाले का पानी सूख गया। उसने देखा कि वह नाला छोटा छोटा होता गया और उसने कहा, मेरा जीवन एक सूखे हुए नाले से बढ़कर नहीं है। वह बिल्कुल सही था। फिर एलिय्याह ने एक विधवा स्त्री के घर कुछ दिन व्यतीत किए, जहां उसने आटे की एक खाली बर्तन के द्वारा भोजन प्राप्त किया और घड़े का आटा मेह बरसने तक समाप्त न हुआ। एलिय्याह ने यह जाना कि वो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है। और जब उसने यह समझ लिया, तब परमेश्वर ने एलिय्याह को बाल के पुजारियों का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया और आकाश से आग भूमि पर लाए। हम 2 कुरिन्थियों के पत्र उसके 12:10 में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, और यह निश्चित ही विरोधाभास है। 2 कुरिन्थियों के पत्र 12:10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। फिर भी ये वो बातें हैं जिन्हें परमेश्वर ने मूसा को सिखाया। जब मूसा ने यह जाना कि वह स्वयं इसराइल को नहीं छुड़ा सकता है, परंतु परमेश्वर उसके द्वारा इसराइलियों को छुड़ा सकता है, तब परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया था। मित्रों हम में से बहुत से लोग आज परमेश्वर द्वारा उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि हम ही सामर्थी समझते हैं, क्या आपने कभी रुककर इसके विषय में सोचा है? परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं कर सकता? जब हम बहुत ज्यादा सामर्थी होते हैं, हमारी निर्बलता में ही हम प्रबल व सामर्थी बनते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके एक अध्याय और उसके 27 पद में पौलुस प्रेरित इस बात का वर्णन करते हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मित्रों, मूसा और पौलुस ने यह जाना कि उनकी निर्बलता में परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा अपने कार्य करता है। मेरे मित्रों, ये जाना अद्भुत बात है कि परमेश्वर एक खाली बर्तन के द्वारा क्या कर सकते हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? मित्रों, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो मूसा ने पूछा। मुझे यकीन है कि हम सभी ने यही प्रश्न पूछा होता। मूसा को डर था कि इसराइली उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वह जानता नहीं था कि वह लोगों को परमेश्वर के बारे में कैसे बताए, वह कैसे लोगों को परमेश्वर द्वारा बताए गए पर्वत पर ले जाए। ये कठिनाइयां मूसा के सामने थी। कृपया ध्यान दे, परमेश्वर ने मूसा को कैसे उत्तर दिया। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि नाम मैं हूँ में जितनी बातें बताई गई है उससे बहुत अधिक कुछ, परंतु ऐसी अनेक बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्हें जानना जरूरी है। इस नाम का अनुवाद है यहोवा, इसे याहवे भी अनुवादित किया गया है। इसराइलियों के लिए एक पवित्र नाम बन गया, और इस हद तक कि वे भूल गए कि इस नाम का उच्चारण कैसे करें, कौन सा उच्चारण सही है, यहोवा या याहवे। परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो इसलिए उन्होंने उसे उपयोग नहीं किया। फिर कौन सा नाम सही है, यहोवा या याहवे, कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का नाम मैं हूँ है। उत्पत्ति में परमेश्वर सृष्टि करता है, वो एलोहिम है, सामर्थ्य परमेश्वर जो स्वयं अस्तित्व में है, मैं जो हूँ सो हूँ, यहोवा परमेश्वर है जो मूसा को इसराइलियों के छुटकारे के लिए भेजता है। भजन संहिता 135 उसके 13 पद में प्रभु इस शब्द को मैं हूँ सो हूँ अनुवादित किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह नाम परमेश्वर है इस वास्तविकता के विषय में बताता है। मूसा का आज्ञा देना। अब हम आगे देखते हैं, यीशु के वादे का पूरे होने के समय आ चुका था, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 25 में लिखा हुआ है, परमेश्वर निश्चय तुम्हारे सुधि लेगा। आइए हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इसराइलियों से यह भी कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया था। वही परमेश्वर मूसा को इसराइलियों के पास भेज रहा था। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 से लेकर 20 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब जाकर इसराइली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो वर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इसराइली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यो कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच में करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। मित्रों, परमेश्वर ने मूसा को कुछ कार्यक्रम और कुछ नियम दिए थे जिनका उसे अनुकरण करना था। वह इसराइलियों को परमेश्वर के उपाय के बारे में बताने वाला है। तब मूसा कुछ इसराइली पुरियों के साथ फिरौन के पास गया और फिरौन से पूछा कि वे 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाएं और परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन उन्हें जाने ना देगा और फिरौन ने इसका इनकार किया। परमेश्वर सब आश्चर्य कर्मों को मिस्र के बीच करेगा और उन्हें मारेगा। इन सब बातों के बाद भी फिरौन नहीं मानेगा और तब परमेश्वर मिस्र पर विपत्तियां ले आएगा और तब फिरौन का मन बदल जाएगा और वह इसराइलियों को जाने देगा। तो आइए हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 21 और 22 पद को पढ़ें। लिखा है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहराना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। मित्रों, इसराइलियों को दास बनाकर रखा जाता था और उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर उनसे कहता है कि वे अपनी मजदूरी अर्थात वेतन ले लें जो उन्हें कई वर्षों तक काम करने के बाद भी नहीं मिला था और इस प्रकार मिस्र छोड़ते समय कोई खाली हाथ ना था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों का कितना ख्याल रखता है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे और इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा की 2 आपत्ति। पहला, उसे यह डर था कि इसराइलियों का अविश्वास। दूसरा, यह कि वह बोलने में ज्यादा अच्छा नहीं था। मूसा के इस आपत्ति पर परमेश्वर का जवाब 2 चिन्हों के द्वारा दिए गए। पहला चिन्ह था एक लाठी जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को कर सके और दूसरा चिन्ह था मूसा का कोड़ से भरा हुआ हाथ जिसे परमेश्वर चंगा करता है ताकि लोग देखें और परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करें। मूसा का भाई हारून मूसा की ओर से बोलने वाला बनता है। मूसा मिस्र लौटकर इसराइल के पुरनियों को उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में बताता है। प्रियो, यह अध्याय हमें बताता है कि मूसा मिस्र को वापस लौटता है और अद्भुत रीति से उसकी आशंका या भय और या संदेह परमेश्वर उससे दूर करता है। मूसा के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं परंतु सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परंतु उसके सारे प्रश्नों के लिए आपत्तियों के परमेश्वर के पास उत्तर है। आगे हम देखते हैं मूसा का विरोध। इसराइलियों को छुटकारा देने वाले के रूप में मूसा की आपत्ति या विरोध। आइए हम निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मूसा के पास कई कारण थे जिससे कि उसे लगता था कि इस काम के लिए वह सही आदमी नहीं है। आने वाले दिनों में मूसा उस लाठी का कई प्रकार से उपयोग करने वाला था। मूसा की लाठी उसके अधिकार का एक चिन्ह होगा और इसराइल और मिस्र के ऊपर मूसा के साथ परमेश्वर के होने की गवाही होगी। मूसा की लाठी उसके लिए एक सामर्थ्य या स्रोत भी होगा। मित्रों, आगे हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। मेरे मित्रों, मूसा ने जब लाठी को जमीन पर रखा तो वह एक सांप बन गई। ध्यान दें कि लाठी सिर्फ एक वस्तु या एक चीज है और लाठी में कोई सामर्थ्य नहीं है और इस वस्तु का उपयोग परमेश्वर और शैतान दोनों के द्वारा ही किया जा सकता था। और मूसा परमेश्वर का जन था और उसकी लाठी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चल रही थी। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 4 अध्याय उसके 4 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। मित्रों, कुछ लोग ऑटोमोबाइल, रेडियो और टेलीविजन को शैतानी मानते हैं पर मित्रों, सच बात तो यह है कि इनका उपयोग दोनों प्रकार से हो सकता है। उदाहरण के रूप में रुपयों का इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों कार्यों के लिए हो सकता है। जबकि लाठी परमेश्वर के जन के हाथ में लगी तो उसका उपयोग सही होगा। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उसके कई महान कार्य होंगे। यह बहुत सी महत्वपूर्ण पाठ यहाँ परमेश्वर सिखा रहे हैं। सांप की पूंछ को पकड़ो। मेरे मित्रों, अपने ऑटोमोबाइल का उपयोग किसी संत को या अविश्वासी दोस्तों को कलीसिया में ले जाने के लिए आप करें, ताकि वे परमेश्वर के वचन को सुन सकें। अपने टेलीविजन व रेडियो में मसीही कार्यक्रम को बढ़ावा दें। मीडिया में भाग लें, ताकि परमेश्वर के पवित्र नाम का प्रसार हो सके। इस प्रकार मित्रों, हम इन सब वस्तुओं का उपयोग उस लाठी की तरह कर सकते हैं जो परमेश्वर के द्वारा चालित है। मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने 40 साल तक प्रशिक्षण दिया और उसे जलती हुई झाड़ी के पास आज्ञा दी। मूसा, जो बहुत ही उतावला था, आज इस काम को करने से मुकर रहा था, और फिर परमेश्वर ने उसे एक लाठी दी जिसे वह परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उपयोग कर सके, और वह लाठी उसके लिए एक अधिकार का चिन्ह बनी। परमेश्वर ने मूसा को विश्वास दिलाया और उसे बहुत सारी चीजें सिखाई, ताकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उसे सौंपी गई थी अच्छी तरह से निभा सके। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस अध्ययन से अवश्य ही आशीष प्राप्त हुआ होगा, और आपने देखा कि परमेश्वर सामर्थी है। उसने एलिय्याह को जीवित रहने के लिए खिलाया, वही मूसा को भी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए बुलाया। वही सामर्थ्य परमेश्वर आपको भी आपके पापों की गुलामी से छुड़ा सकता है, जिस प्रकार उसने अपना नाम मैं हूँ कहा और फिरौन के हृदय को कठोर कर अपनी सामर्थ्य प्रकट की। वही अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा आपको पापों से छुड़ा सकते हैं। क्या आप उस सामर्थ्य परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? यदि हाँ, तो आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे सहायता मांग सकते हैं। जिस प्रकार से उसने मूसा को उपयोग किया, जो कि कुछ भी नहीं था, अपने सामर्थ पर भरोसा रखता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके सामर्थ का उपयोग अपने तरीके से किया। यदि आज आप भी अपने सामर्थ को, अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने लाते हैं, तो निश्चय ही वह आपके जीवन को आशीष से भर देंगे। मित्रों, आज हमारे लिए समय है कि हम अपने जीवन में एक निर्णय लें और परमेश्वर के पास आएं, ताकि हम उसके आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। चाहे हम कितने भी दुर्बल, कमजोर और पापी क्यों ना हो, वह हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम इसमें प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस अध्ययन के लिए, जिसे आपने हमें सिखाया कि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप एलिय्याह को भोजन दे सकते हैं और मूसा को, जो कमजोर और दुर्बल है, अपने आपके सामर्थ पर भरोसा रखता है, उसके जीवन को भी बदल कर आप अपने तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए, जो अपने जीवन में सामर्थ्य महसूस करते हैं, उनके जीवन को आप स्पर्श करें, उनसे बातचीत करें, ताकि वे जानने पाए कि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप उनके बुराइयों से, उनकी कमजोरियों से, उनकी बीमारियों से छुटकारा दे सकते हैं। आप उन्हें शांति दे सकते हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं हर एक श्रोता भाई बहनों को आज के दिन आशीष दें, उन्हें निर्णय लेने में मदद करें, ताकि आने वाले दिनों में वे आपको महिमा दे सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्हें तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्हें तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्हें तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्हें तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्हें तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके, अपने तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके, अपने तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।